नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चारू सक्सेना। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने राजधानी के रोहिणी स्थित सरकारी स्कूल में रोजगार मेले का आयोजन किया। दिल्ली सरकार राजधानी को स्वच्छ, हरित और कचरा मुक्त बनाने के लिए कल से दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेगी। दिल्ली होमगार्ड्स के महानिदेशक SBK सिंह को दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। नई दिल्ली महानगर पालिका परिषद नागरिकों से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए शनिवार को NDCC कन्वेंशन सेंटर में सुविधा शिविर का आयोजन करेगी और दिल्ली विकास प्राधिकरण इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हॉट एयर बैलून गतिविधियां शुरू करेगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार की शिक्षा विभाग द्वारा राजधानी के रोहिणी स्थित एक सरकारी स्कूल में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में शिक्षा मंत्री आशीष सूद उपस्थित रहे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने रोजगार देने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों से विस्तार से चर्चा की।
इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने छात्रों से भी संवाद किया कि कैसे वह इन कंपनियों में नौकरी पाकर अपना भविष्य संवार सकते हैं और समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब छात्रों को उनके हुनर, योग्यता और प्रतिभा के अनुसार सही अवसर मिलने शुरू हो गए हैं। इस रोजगार मेले में 30 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों ने हिस्सा लिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये कार्यक्रम केवल एक रोजगार मेला नहीं है, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा ने कितनी प्रगति की है। श्री सूद ने बताया कि पिछले शैक्षणिक सत्र में 4,20,000 से अधिक छात्रों ने दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का चयन किया, जो यह दर्शाता है कि कौशल आधारित शिक्षा अब मुख्य धारा की शिक्षा का अभिन्न अंग बन चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक छात्र न केवल विद्यालय के लिए तैयार हो, बल्कि कौशल युक्त शिक्षा और भविष्य की चुनौती के लिए भी तैयार हो। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक राजकुमार चौहान, शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावक और बच्चों को रोजगार प्रदान करने वाली कई कंपनियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
दिल्ली सरकार राजधानी दिल्ली को स्वच्छ, हरित और कचरा मुक्त बनाने के उद्देश्य से कल से दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि एक महीने तक चलने वाले इस अभियान में दिल्ली की विभिन्न एजेंसियां और नागरिक स्वच्छता के उद्देश्य से मिलकर काम करेंगे।
सरकार ने इस अभियान के लिए दिल्ली नगर निगम को 5 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अभियान के बारे में बताया कि अभियान के पहले 2 दिन स्कूलों, अस्पतालों और कार्यालयों में लंबित सफाई कार्यों को निपटाने पर केंद्रित होंगे। प्रत्येक शनिवार और रविवार को अनधिकृत कॉलोनियों और जेजे क्लस्टरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा 14, 21 और 28 अगस्त को यमुना घाटों पर विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। 29 और 31 अगस्त को रिंग रोड की सफाई की जाएगी। इस अभियान में दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और दिल्ली पुलिस जैसी एजेंसियां समन्वय के साथ काम करेंगी। अभियान में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने प्रोत्साहन राशि भी निर्धारित की है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को 25 लाख रुपए, दूसरे स्थान के लिए 15 लाख रुपए और तीसरे स्थान के लिए 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। रहीसिद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा कि दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान के लिए निगम ने सभी तैयारियां कर ली हैं। उन्होंने कहा कि एक माह तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत सभी 12 जोनों में सफाई कार्य होंगे, जिसमें निवासियों, स्कूलों, बाजार, संघों और सामुदायिक समूहों की सक्रिय भागीदारी होगी। महापौर ने बताया कि यह अभियान आवासीय कॉलोनियों, बाजारों, औद्योगिक क्षेत्रों, स्कूलों, कॉलेजों, झुग्गी झोपड़ी बस्तियों, सार्वजनिक शौचालयों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर गहन सफाई कार्य करेगा। वहीं महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने यमुना घाट पर आज एक निजी संस्था द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में 1,35,000 जामुन के पेड़ों के बीजों से बनी बॉल वितरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जब ये बीज यहाँ पेड़ बनकर लहलहाएंगे, तब इनसे प्राप्त हरियाली और ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे आने वाली पीढ़ी को लाभ मिलेगा। महापौर ने कहा कि दिल्ली की ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए काम कर रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत द्वारा मालेगांव केस को लेकर आज सुनाए गए फैसले का स्वागत किया है। श्री सचदेवा ने कहा कि झूठे मामले में लोगों को निशाना बनाकर फंसाया गया था, जो इस फैसले से ने मतलब साबित कर दिया है। उन्होंने मांग की कि झूठा मुकदमा चलाने वाले लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। श्री सचदेवा ने आरोप लगाया कि आतंकियों को बचाने के लिए कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद की झूठी कहानी रची थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली होमगार्ड के महानिदेशक SBK सिंह को आज दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वर्तमान दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पूर्व में दिल्ली के होमगार्ड महानिदेशक के पद पर तैनात रहे SBK सिंह अगले आदेश जारी होने तक दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर रहेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कथित रिश्वत मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया है। CBI के बयान के अनुसार आरोपी अधिकारी ने शिकायतकर्ता से उसकी दुकान के फ्री होल्ड के लिए आवेदन आगे बढ़ाने के सिलसिले में कथित रूप से 50,000 रूपये की रिश्वत की मांग की थी। CBI ने बताया कि अधिकारी को 50,000 की मांग करते हुए शिकायतकर्ता से 20,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC नागरिकों से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए शनिवार को NDCC कन्वेंशन सेंटर में सुविधा शिविर का आयोजन करेगी। एक रिपोर्ट।
NDMC ने कहा है कि इस शिविर का उद्देश्य नागरिकों को सेवाओं से जुड़ी जानकारी, सहायता और शिकायत निवारण प्रदान करना है। शिविर में बिजली कनेक्शन, संपत्ति कर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन योजनाएं, जल भराव, अपशिष्ट निपटान और सड़क मरम्मत से संबंधित शिकायतों का समाधान किया जाएगा। NDMC ने कहा कि जन सुविधा पोर्टल के माध्यम से भी नागरिक घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नागरिक ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। इस शिविर का आयोजन 2 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक किया जाएगा। रहीसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान जारी केंद्र की योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 1,920 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय के साथ कुल 6,520 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी।
साइंटिफिक तरीके अपनाने से किसानों की इनकम में सुधार आता है, इसीलिए जरूरी है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए फूड टेस्टिंग लैब्स की स्थापना की जाए। तो आज के फैसले में ओवरऑल आउटले बढ़ाया गया टू 6,520 करोड़ रुपीज और उसमें से 1,000 करोड़ स्पेसिफिकली रखा गया 50 इरेडिएशन यूनिट्स एंड 100 फूड टेस्टिंग लैब्स के लिए।
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए 2,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्रीय योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अनुदान सहायता NCDC को भी मंजूरी दी है।
NCDC कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लोन देती है, आज उसका कैपिटल 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाया गया ग्रांट इन एड के माध्यम से। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ये जो लोन्स जाते हैं करीब करीब 8.25 लाख कोऑपरेटिव्स को जाते हैं, 29 करोड़ मेंबर्स हैं जिनके और 94% फार्मर्स हैं उसके साथ जुड़े हुए। NCDC जो लोन देती है उस लोन में करीब करीब 99.8% रिकवरी है, नेट NPA 0 है।
आज संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा की मांग को लेकर बार बार स्थगित हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित होने से पहले लोकसभा 2 बार और राज्यसभा 3 बार स्थगित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद जब शाम 4 बजे शुरू हुई तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार भारतीय वस्तुओं पर 25% शुल्क लगाए जाने की अमेरिका की हाल की घोषणा के प्रभावों की जांच कर रही है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है।
राज्यसभा में भी शोर शराबे की स्थिति रही। शोर शराबे के बीच पीठासीन अधिकारी ने कार्यवाही शाम 4:30 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही जब फिर शुरू हुई तो विपक्ष का शोर शराबा जारी रहा और बाद में सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित हो गई। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की सूची को अंतिम रूप दिया है। उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। आयोग को निर्वाचक मंडल के सदस्यों की नवीनतम सूची तैयार करने का दायित्व है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि ये सूची आधिकारिक अधिसूचना के बाद निर्वाचन आयोग के काउंटर पर उपलब्ध होगी। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने का दायित्व निर्वाचन आयोग का है। देश में मोबाइल टेलीफोनी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन एमरा और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल एसोसिएशन ओरा ने संयुक्त रूप से नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में देश की तकनीकी और संचार क्रांति की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को रेखांकित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया उन्होंने, जिसमें 3 दशकों के 300 से अधिक प्रतिष्ठित मोबाइल प्रदर्शित किए गए थे। इस प्रदर्शनी में व्यक्तिगत संपर्क के विकास और इसके व्यापार, संचार और संस्कृति पर प्रभाव की एक रोचक झलक पेश की गई। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाओं की अंतिम तिथि 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। पुरस्कारों के लिए नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर की जाएगी। इन पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार विशिष्ट कार्यों को मान्यता प्रदान करने के लिए सभी क्षेत्रों और विषयों में विशिष्ट असाधारण उपलब्धियों तथा सेवा के लिए दिया जाता है। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 1 अगस्त से लागू होगा। इसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में शासन मानकों में सुधार लाना और जमाकर्ताओं एवं निवेशकों के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष 15 अप्रैल को अधिसूचित इस अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लेखा परीक्षा गुणवत्ता में सुधार लाना और सहकारी बैंकों में निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाना है। अधिनियम के प्रावधानों का उद्देश्य पर्याप्त ब्याज की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करना है। राजधानी दिल्ली में आज तेज बारिश हुई, जिससे तापमान में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने राजधानी के रोहिणी स्थित सरकारी स्कूल में रोजगार मेले का आयोजन किया। दिल्ली सरकार राजधानी को स्वच्छ, हरित और कचरा मुक्त बनाने के लिए कल से दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेगी। दिल्ली होमगार्ड्स के महानिदेशक SBK सिंह को दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद नागरिकों से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए शनिवार को NDCC कन्वेंशन सेंटर में सुविधा शिविर का आयोजन करेगी और दिल्ली विकास प्राधिकरण इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हॉट एयर बैलून गतिविधियां शुरू करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।